Om Narayana 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 Dharman Bhagavata Nittham Shrutvatha Mithileshwarah Jayante Yan Munin Pritah Sopathyayo Hyapujayat. श्रीमद् भागवत का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, नवयोगेश्वर संवाद, और नवयोगेश्वर संवाद के बाद का प्रसंग है अवधूत गीता। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के प्रारंभ में द्वारका में नारद जी महाराज जी का आगमन होता है। नारद जी महाराज जी के आगमन से वसुदेव जी महाराज, जो भगवान के पिता है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वे नारद जी महाराज जी का पूजन करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा को व्यक्त करते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ज्ञान को पाने का सर्वप्रथम उपाय है ब्रह्म जिज्ञासा, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। ब्रह्म सूत्र का पहला ही सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जानने की इच्छा जब साधक में पैदा हो जाती है तो वो इच्छा उसको शांति से बैठने नहीं देती है। इसलिए एक सूत्र है, जानाति इच्छति प्रयतते प्राप्नोति। इच्छा होने के बाद इच्छति, ज्ञान के बाद इच्छति, इच्छति के बाद प्रयतते। इच्छा हमेशा व्यक्ति को पुरुषार्थ में ले जाती है, श्रम में ले जाती है। सत्संग सुनने की इच्छा आपको हो जाए तो आप घर में बैठ नहीं सकते, आप सहजता से सत्संग में आके बैठ जाएंगे। और उनके मन में जब ब्रह्म जिज्ञासा का उदय हुआ, वसुदेव जी महाराज जी के मन में, और उन्होंने वो जिज्ञासा नारद जी महाराज जी के सामने रख दी, एक बड़ी आश्चर्य की बात है। सारी दुनिया, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान के पास ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते हैं द्वारका में। द्वारका में एक उपवन है जो शहर से नगर से बाहर है, वहां नारद जी महाराज, वामदेव, बड़े बड़े उस समय के जितने भी ऋषि थे वो आकर के रहते थे उस उपवन में। आश्रम था बहुत बड़ा और भगवान से ज्ञान की चर्चा करते थे, भगवान ज्ञान सुनाते थे, अनेकों प्रकार की धर्म की चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन अभी तक वसुदेव जी महाराज जी को ज्ञान नहीं हुआ है और वसुदेव जी महाराज जी ने कभी प्रश्न भी नहीं पूछा ज्ञान के संदर्भ में। घर में ज्ञानी है, घर में भगवान है, लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा कभी नहीं हुई। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत कोई निकट की चीज हो तो उसका मूल्य नहीं होता है। आप कहते भी है ना कि घर की, हाँ बोलते हैं कि नहीं कि आपके घर में ही कोई चीज पैदा हो तो उसका मूल्य नहीं रहता है। इसलिए अक्सर अपने आसपास का कोई आदमी ज्ञानी मालूम नहीं पड़ता है, आसपास का आदमी कभी ध्यानी मालूम नहीं पड़ता है, आसपास का आदमी कभी भक्त मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना वो निकट हो जाता है उतना ही उसकी अवज्ञा शुरू हो जाती है, उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। कहां भगवान श्री कृष्ण, और उसके बाद भी कभी भी वसुदेव जी महाराज जी के मन में जिज्ञासा का उदय ही नहीं हुआ, क्योंकि वो समझते थे ये मेरा बेटा है। और जब एक बार आपको मालूम हो जाए कि मेरा बेटा है या मेरा शिष्य है तो आपसे बड़ा तो होगा ही नहीं। आपके मन में एक भाव पैदा होगी मेरा शिष्य है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा ही ये ज्ञान की दृष्टि से मेरे से कम है, समझ की दृष्टि से कम है। आपका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए तो आपको बड़ा मालूम नहीं पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि अभी छोटा ही है। परम पूज्य महाराज जी के पास एक भक्त थे, जेठी जी बड़े अच्छे भक्त थे। वो लंदन से पढ़ करके आए दिल्ली में, बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन उनकी मां उनसे कभी इंजेक्शन नहीं लेती थी। वो बोलती थी कि इसको आता क्या है, तो वो अपने पास जो काम करने वाली नर्स होती थी उसको भेज देते थे, और जब वो लगाती थी तो ये बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आज नारद जी महाराज जी आए, और नारद जी महाराज जी को भगवान से बड़े समझते हैं वसुदेव जी महाराज। उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा व्यक्त कर दी, बोले प्रभु मैंने बहुत कुछ साधनाएं की। यहां उनका एक बहुत सुंदर श्लोक है, एक ही श्लोक में आप वसुदेव जी महाराज जी को समझ सकते हैं, वो कितने बड़े साधक थे। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी साधनाएं की, सगुणोपासना कृतोपास्तिता, भगवान के दर्शन हुए, और भगवान के दर्शन होने के बाद भगवान ने कहा मांगो तुमको क्या चाहिए, अहम किल पूरा। मैंने उनको अपने पहले जन्म की बात भी याद है, वसुदेव जी महाराज जी को अपने पहले जन्म की बात याद है, पहला जन्म संदिग्ध नहीं, निश्चित उनको पता है। अहम किला पुरा पुरा अनंतम प्रजार्थो भूवि मुक्तिदम आपूजयम न मोक्षाय मोहितो देवमाय। अनंत प्रकार से मैंने अनंत जन्मों में भगवान की साधना की, और एक जन्म उन्होंने बताया कि भगवान के दर्शन हुए, और भगवान के दर्शन होने के बाद भगवान ने बोला मांगो आपको क्या चाहिए, साधना आप क्यों कर रहे हैं। उनको तो मांगना था मोक्ष, उनको तो आत्मज्ञान मांगना था, जिज्ञासा को व्यक्त करना था, लेकिन भगवान के उस रूप को देखा उन्होंने, क्योंकि आकार में थे, साकार थे, और भगवान बहुत सुंदर मोहितो देवमाय। और जब उन्होंने भगवान को देखा तो मोक्ष भूल गए, मांगना था निराकार को, और उस आकार का इतना सौंदर्य था कि वो निराकार को भूल गए। और उन्होंने कहा कि त्वत् सदृशो पुत्रो भूयादिति, बोले तुम्हारे जैसा बेटा हो जाए, तुम्हारे जैसा बेटा पैदा हो जाए। ये कितनी आश्चर्य की बात है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं कि मांगो आपको क्या चाहिए, और उनको मांगना है मोक्ष, मांगना है साधना आत्मज्ञान के लिए है, मोक्ष के लिए है, और उन्होंने मांगा कि बेटा चाहिए, लेकिन आपके जैसा बेटा चाहिए। माने आकार की वासना है, अभी अवशेष है आकार की वासना है, चाहे भले ही वो भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, लेकिन आकार की वासना है, वो आकार की वासना ब्रह्म जिज्ञासा में बाधा बन गई। ये प्रतिबंध है आसक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान में आसक्ति बाधा बन जाती है। विषयासक्ति को ब्रह्म ज्ञान में बाधा माना है, क्योंकि हम चाहते हैं तो ब्रह्म ज्ञान, उस चाह में यदि दूसरी चाह आ गई तो बाधा बन जाएगी, एक चाह दूसरी चाह में बाधा बन जाती है। अभी आप सत्संग में आए हैं, और इसी समय मान लीजिए आपके मन में इच्छा पैदा हो जाए बैठे बैठे किसी भी चीज की, तो आप कोई ना कोई बहाना बना के आप उठ के चले जाओगे आप, क्योंकि वो इच्छा है, एक इच्छा दूसरे इच्छा को बाधित कर देती है। दुराग्रह भी आपके आत्मज्ञान में बाधा है, प्रज्ञा मान्य भी आत्मज्ञान में बाधा है, ये तीन चीजें आत्मज्ञान में बाधा मानी गई। प्रज्ञा मान्य, प्रज्ञा मान्य माने प्रज्ञा की कमी, समझ की कमी, यदि समझ की कमी हो, आप श्रवण मनन निधिध्यासन करने में समर्थ ना हो तो आत्मज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्रज्ञा मान्य प्रतिबंध है, दुराग्रह प्रतिबंध है, विषयाशक्ति प्रतिबंध है। यहां पर विषयाशक्ति प्रतिबंध बन गई, बेटी की आसक्ति थी और उन्हें प्रार्थना की कि आपके जैसा बेटा हो जाए। अब भगवान ने कहा भैया मेरे जैसा तो कोई दूसरा होता नहीं। भगवान ने कहा कि मैं तो स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहित हूं। भगवान ने वेदांत की बात बोल दी। भगवान ने कहा मेरे में भेद नहीं है, स्वगत भेद। स्वगत भेद माने अवयवों का भेद, हाथ पैर नाक कान ये सारे जो अवयव है ये विभिन्न विभिन्न है, और इन विभिन्न विभिन्न अवयवों का जो आपस में भेद है वो स्वगत भेद है। हाथ पैर नहीं, पैर आंख नहीं, आंख कान नहीं, ये अलग अलग अवयव हैं। इन अलग अलग अवयवों से मिलकर एक शरीर पैदा हुआ, ये स्वगत भेद है। इस शरीर का दूसरे शरीर के साथ जो भेद है वो सजातीय भेद है। इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया पंचदशीकार ने, पंचदशी में। आप दुनिया के जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं आपको, उसमें ये तीन भेद आपको मालूम पड़े। स्वगत भेद मतलब उस पदार्थ के अंदर के भेद, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ भेद, जैसे ये शरीर है दूसरे शरीर के साथ भेद, ये सजातीय भेद। इस शरीर की जाति वाला माने मनुष्यत्व जाति शरीर में और दूसरे मनुष्य में भी मनुष्यत्व जाति है, सजातीय भेद। एक पशु का दूसरे पशु के साथ भेद, एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष के साथ भेद, ये सजातीय भेद। और विजातीय भेद माने विभिन्न जातीय पदार्थों का जो भेद है, एक शरीर का पशु के साथ भेद, एक पशु का वृक्ष के साथ भेद, एक वृक्ष का एक मकान के साथ भेद, विजातीयता है। पशु में पशुता है और वृक्ष में वृक्षत्व है, ये विजातीय भेद है। मनुष्य में मनुष्यत्व है और पशु में पशुत्व है, दोनों में विजातीयता है, ये विजातीय भेद। दुनिया की आप कोई भी अनात्म पदार्थ ले लीजिए, उसमें तीनों प्रकार के भेद हैं, स्वगत भेद हैं, सजातीय भेद हैं और विजातीय भेद। भगवान ने कहा मेरे में कोई भेद ही नहीं है। भगवान बहुत गहरी बात बोल गए। भगवान ने कहा कि तुमको भेद मालूम पड़ रहा है, वो भेद नहीं है। आपके सामने जब भगवान आ जाए, हाथ पैर आप जैसे वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर भगवान का मुख मंडल, हस्त कमल चरण कमल, बहुत सुंदर वर्णन आता है। लेकिन भगवान कहते ये जो भेद है ये आकारगत भेद, ये वास्तविक भेद नहीं है, ये दृष्टि भ्रम है। जैसे आपके सामने कोई स्वर्ण की मूर्ति है तो स्वर्ण मूर्ति में आप क्या भेद समझते हैं? सोने की मूर्ति है, नाक भी वही है और हाथ भी वही है। आपको मालूम पड़ता है ये नाक है, सोने की मूर्ति है, आपको मालूम पड़ेगा ये हाथ है, ये पैर है। लेकिन आप स्वर्णकार की दृष्टि से देखेंगे तो आपको सोना ही मालूम पड़ेगा उसमें। ये वासना की दृष्टि है, आपको नाक देखना है इसलिए नाक मालूम पड़ रहा है, आपको हाथ देखना है, हाथ की वासना आपको हाथ की तरफ ले जाती है, आपको हाथ मालूम पड़ता है, पैर की वासना आपको पैर के तरफ खींच कर ले जाती है, पैर मालूम पड़ते हैं। जिसकी वासना है वो आकार हम पैदा कर लेते हैं, हमारे अंदर जिसकी वासना है वो हम बाहर आकार पैदा कर लेते हैं, ये दृष्टि ब्रह्म है। हमारी वासना का आकार हमारे दृष्टि में आ जाता है और वो आकार फिर बाहर मालूम पड़ता है, दिखाई देता है, वो आकार नहीं है, वो केवल दृष्टि भ्रम है। स्वर्णकार की दृष्टि से आप देखेंगे वहां मालूम पड़ेगा केवल सोना, आपको वो नहीं मालूम पड़ेगा, हाथ पैर नहीं मालूम पड़ेंगे, मालूम पड़ते हुए भी नहीं मालूम पड़ेंगे। तत्व दृष्टि है, स्वर्ण दृष्टि तत्व दृष्टि है। वहां कोई भेद नहीं, स्वगत भेद नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई दूसरा ईश्वर होता तो वहां पर सजातीय भेद बन जाता, लेकिन ईश्वर तो एक है, एकमेवाद द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म तो एक है, वहां कोई भेद ही नहीं है, सजातीय भेद नहीं है। भगवान ने कहा विजातीय नहीं है, मेरे से टक्कर लेने वाला दूसरा कौन है? कोई भाई दूसरी जाति वाला ईश्वर होता, मान लीजिए कि हिंदू ईश्वर होता, वो कोई मुसलमान ईश्वर भी होता, तो विजातीयता आ जाती ईश्वर के साथ, विरुद्ध धर्म आश्रयता ईश्वर में आ जाती। लेकिन भगवान ने कहा मैं अकेला हूं, मैं मेरे जैसा तो कोई दूसरा ही नहीं। अब तुम बोलते हो कि तुम मेरे जैसा कोई बेटा हो जाए, बोले कैसे ये संभव कैसे है? तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, खुद ही तुम्हारा बेटा बन के आ जाता हूं। तो भगवान में तीनों प्रकार का सामर्थ्य है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य। वो निराकार है, वो आकारवान भी हो सकते हैं, वो अजन्मा है लेकिन जन्म ले सकते हैं, निर्गुण है लेकिन बहुत गुणवान बन के आ सकते हैं, वो सामर्थ्य है। भगवान आ गए, बेटा बनकर के आ गए। लेकिन आश्चर्य की बात, अभी भी वसुदेव जी महाराज जी के मन में जो पुत्र बुद्धि है वो खत्म नहीं हुई है। आज भी वसुदेव जी महाराज जी को लगता है ये तो मेरा बेटा है, आज भी तत्वदृष्टि नहीं है, लेकिन इसका बोध है, बोध नहीं होने का बोध है। आदमी को बोध नहीं होता है, लेकिन बोध नहीं होने का बोध नहीं होता है, और बोध नहीं होने का जो बोध है वो बोध का प्रथम संकेत है। आदमी को मालूम नहीं होता है, लेकिन मालूम नहीं है ये भी मालूम नहीं होता है। आदमी आगे क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि मालूम नहीं है ये मालूम नहीं है, बोध नहीं है इसका बोध नहीं है। वसुदेव जी महाराज जी को मालूम पड़ा, मेरे को बोध नहीं है ये उनको मालूम पड़ा, ये इन्होंने कहा कि नहीं अपुजयम न मोक्षाय। ओहो, हमने इतनी बड़ी साधना की लेकिन हमने अभी तक मोक्ष को पाया नहीं, अभी तक हमने बोध को प्राप्त नहीं किया, तत्व ज्ञान अभी हुआ ही नहीं, आज उनको मालूम पड़ा। मैंने तो जाना ही नहीं, और ये बहुत बड़ी बात है, ये जिज्ञासा का उदय इसी से होता है। यदि मालूम हो जाए कि मालूम नहीं है, वहीं से तो जिज्ञासा पैदा होती है। मालूम हो जाए कि बोध नहीं हुआ है, वहां से तो जिज्ञासा पैदा हो जाती है, और ये बहुत बड़ी पीड़ा है। आपको मालूम हो जाए कि मालूम नहीं है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। आदमी को मालूम ही नहीं होता कि मेरे को मालूम नहीं, और इसलिए आदमी बहुत आराम से होता है, आदमी आराम से है। ओ बहुत, आदमी को आप बोलो कि आप नहीं जानते, बोलेगा नहीं नहीं जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। वो नहीं जानता हूं इसका पता नहीं है, आराम से आपकी चीज खो चुकी है और आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी चीज खोई है, तो आराम से है। ये पता होना बहुत खतरनाक है, ये खोने अपना खोना भी अभी तक मालूम नहीं है। और जिस दिन आपको मालूम हो जाए कि मैं खोया हूं, और जिसको मैं समझ रहा हूं कि वो मैं है ही नहीं, हम क्या समझते हैं ये शरीर मैं हूं, आराम से हम समझते हैं ये मैं, बहुत सारी चीजों को हम समझते हैं ये मैं खो गया है, मैं का खोना ही पता नहीं है। और जिस दिन पता हो जाए कि मैं कौन है, आप उदाहरण हमेशा श्रवण करते हैं, इंद्र और विरोचन, देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए, ज्ञान को उन्होंने पाया और वापस आ गए। आश्चर्य की बात, विरोचन बड़ा खुश हो गया, वो शरीर आत्मवादी बन गया, वो पानी का एक पात्र रखा और बोला गया कि इसके अंदर तुम देखो, और जो देखो वही तुम्हारी आत्मा है। विरोचन ने देखा, अपना प्रतिबिंब देखा, वो शरीर देखा, वो समझ गया यही मेरी आत्मा है, चला गया। शरीर को ही वो अहम समझ के चला गया। इंद्र को मालूम पड़ा, अरे शरीर को ही मैं कैसे मैं समझूं, ये शरीर मेरा मैं कैसे हो सकता है, मैं मिस हो गया। ये जो मैं हूं, आप पहली बार मालूम पड़ा कि जिसको मैं समझता हूं वो मैं हूं ही नहीं, मैं खोया है लेकिन मालूम नहीं मैं खोया है। और हम आराम से आपकी बहुत कीमती चीज है, आपके जेब में रखी है, आप घर से निकले आपकी खो चुकी है, आपको मालूम नहीं है, और आप बहुत आराम से हैं, लेकिन आपने हाथ डाला जेब में और मालूम पड़ा कि तो है ही नहीं, आप उस समय आप क्या करोगे, आप बहुत परेशान हो जाओ। खोना अलग चीज है और उस खोने का बोध होना अलग चीज है। आदमी को मालूम पड़ जाए यही तो क्रांति है। जीवन में सबसे बड़ी क्रांति क्या है, ये मालूम हो जाना ही क्रांति है, पता चल जाना ही क्रांति है। कि जिसको हम मैं समझते हैं वो मैं नहीं है, इतना ही पता हो जाए। आज मालूम पड़ा वसुदेव जी महाराज जी को, न पूजयम मोक्षाय। अरे बोले मोक्ष के लिए तुमने प्रयत्न ही नहीं किया, अपने को जानने के लिए तो प्रयत्न ही नहीं किया, अबे पीड़ा हो, ये बहुत बड़ी पीड़ा है, ये बहुत बड़ी पीड़ा, ये बहुत बड़ी जिज्ञासा है। साधना का कदम, प्रथम कदम मोहितो देव माया। उन्होंने कहा कि मैं मोहित हो गया था, अब क्या करना चाहिए। बोले तथा नह शाधी सुव्रत, बोले अब मेरे को उपदेश करो, ज्ञान का उपदेश करो, मेरे को आत्मज्ञान का मार्ग बताओ। वसुदेव जी महाराज जी को आज पहली बार ब्रह्म जिज्ञासा उनके अंदर पैदा हो गई और बोध के मार्ग पर पहली बार चल पड़े। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात कि भगवान के साथ रहे और उसके बाद भी भगवान के सामने जिज्ञासा व्यक्त नहीं की है। और वो भी नारद जी महाराज जी के पास, क्योंकि नारद जी महाराज जी को वो ज्ञानी समझते हैं। तथा तेन प्रकारेण नह शाधि सुव्रत, मेरे को ज्ञान का उपदेश करो। अब यहां नारद जी महाराज जी को कहना चाहिए था कि आप मेरे से क्यों ज्ञान का उपदेश श्रवण करना चाहते हैं, मैं तो भगवान के पास ज्ञान का श्रवण करने के लिए आता हूं, और ये उपदेश करते समय भगवान भी बगल में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। नारद जी महाराज जी ऐसा महापुरुष, और वो जब महल में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वसुदेव जी महाराज हैं, और हाथ जोड़ के वसुदेव जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं मेरे को ज्ञान का उपदेश करो, भगवान भी बगल में बैठे हैं, और भगवान बहुत अपने भक्त का आदर करते हैं, साधु महात्माओं का बहुत आदर करते हैं। जब नारद जी महाराज घर में आते तो भगवान अपने हाथों से चरण धोते थे, उनको ऊपर बैठाते थे, ववंद, वो साष्टांग प्रणिपात करते थे भगवान, हाथ जोड़ के भगवान भी बैठे हैं। उस समय नारद जी महाराज भगवान की तरफ देखते हैं, प्रभु ये क्या लीला क्या है, आप बैठे हैं और मेरे को ज्ञान का उपदेश, और ये जो जिज्ञासा है ये कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं है। हमारे जीवन में दो प्रकार की जिज्ञासा हुआ करते, एक सामान्य जिज्ञासा और एक विशेष जिज्ञासा। सामान्य जिज्ञासा माने आपात किसी चीज को जानने की इच्छा, आप जानना चाहते हैं भाई भगवान क्या है, जानना चाहते हैं। आप दुकान में जब जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, एक चीज आपको खरीदनी होती है, आपको एक चीज खरीदनी है, लेकिन आप पूछते भैया वो कितने की है, बोले इतने की लेना है, बोले नहीं 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 ऐसे ही पूछ रहे हैं। आप बहुत सारी चीजें पूछते हैं, खरीदना एक चीज है, और बहुत सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, बोले कितने की है वो इतने, लेकिन आप लेते हैं ना वो, फिर वो विशेष चीज है। फिर आप बोलते हैं वो 10 रुपए की, बोले भैया ये 9 में दोगे, 8 में लोगे, 5 में दोगे, अब वहां वेदना है, वो जानने में संवेदना है। अब आपकी विशेष जिज्ञासा हो गई, बाकी की चीज जानने की, बहुत सारी चीज जानने की, ये सामान्य जिज्ञासा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो वो है, आपको लेना ही लेना है, आपको लेना ही लेना, और उस समय जो आप जानना चाहते हैं वो बहुत मूल्यवान जानने की चाह है। आज जो वसुदेव जी महाराज जी के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, ये सामान्य जिज्ञासा नहीं है, ऐसे हजारों बार प्रश्न पूछ चुके हैं वसुदेव जी महाराज। नारद जी महाराज तो आते रहते थे और बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, पूछते थे आत्मज्ञान कैसे होगा, आत्मा क्या चीज, बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, लेकिन उस प्रश्न में प्राण नहीं थे। सामान्य पूछते थे, सत्संग होना चाहिए, साधु महात्मा आ गए, और कई बार आदमी अपने लिए नहीं पूछता है, कई बार आदमी अपने आसपास के लोगों के लिए पूछता है। वसुदेव जी महाराज जी को लगता था कि कम से कम मेरे बेटे तो सुधर जाएंगे। नारद जी महाराज घर में आए हैं और वो बोलेंगे तो मेरे बेटे सुनेंगे, मेरे पोते सुनेंगे, मेरी बहुएं सुनेंगी, और ये धार्मिक बने रहेंगे, ये तो नास्तिक न हो जाए। कई बार आदमी अपने लिए नहीं पूछता है, कई बार आदमी महात्माओं को अपने घर अपने लिए नहीं ले जाता है, वो अपने बच्चों के लिए ले जाता है, वो सोचता है कि इनको संस्कार बन जाएंगे। आज नारद जी महाराज जी के सामने जो प्रश्न रखा वसुदेव जी महाराज जी ने, ये आज पहली बार उन्होंने अपने लिए पूछा। यही तो अपने लिए जीना है, हम जीते हैं, हम अध्यात्म भी करते हैं तो दूसरे के लिए, बहुत बार हम दूसरे को सिखाने के लिए करते हैं, लेकिन आज अपने लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। शादिमाम सुव्रत, ओहो, हमारे अंदर से जैसे भूखा व्यक्ति और वो प्राणों से भिक्षा मांगता हो, भोजन की प्रार्थना करता हो, मेरे को भोजन चाहिए। आज पहली बार वसुदेव जी महाराज जी ने अपने लिए प्रश्न पूछा, जिज्ञासा व्यक्त की, और भगवान कहते हैं कि जिज्ञासा जो है वो तत्व ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान ने तीन उपाय बताए, ज्ञान को प्राप्त करने के तीन उपाय हैं। आप गुरु के पास जाए तो सबसे पहले प्रणाम, प्रणाम करना भी ज्ञान का उपाय है। ये बहुत गहरी बात बोली भगवान ने, आदमी को लगे प्रणाम करना ज्ञान को पाने का उपाय है, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवान कहते सबसे पहले प्रणिपात, आपके अंदर का जो होना है वो प्रणाम के साथ होना शुरू हो जाता है। आप कभी देखना, आप किसी महात्मा के सामने जो हाथ जोड़ना तो लगता है कि कुछ चीजें खो रही हैं, आपके अंदर की कोई कठोरता पिघल रही है, आप प्रणाम करने के साथ कुछ बदलना शुरू हो जाते हैं। ये कोई सामान्य चीज नहीं है, प्रणाम करना कोई सामान्य चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, इसलिए भगवान ने इसको सामान्य अर्थ में नहीं लिया। भगवान ने कहा प्रणाम, तद्विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले प्रणाम। और प्रणाम का अर्थ ये नहीं है कि आप बस ज्ञान को पाना था तो वो बैठ गए बस हाथ जोड़ के, ये निरंतरता है, ये प्रणाम एक साधना की निरंतरता है। आप हमेशा झुके हुए हो, आप हमेशा विनम्र हो, आप हमेशा ये अपने अंदर से भाव जगाए हुए हैं, बस कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं। नमे इति नमः, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, नमे मेरा कुछ भी नहीं, तुम्हारा ही कुछ, सब कुछ तुम्हारा है, मेरे में कुछ भी नहीं है, ये नमस्कार है। ये बहुत बड़ी साधना है, अपने को खोने की साधना है, यह अहंकार को मिटाने की साधना है, प्रणाम करना अहंकार को मिटाने की साधना है। उसके बाद भगवान का सेवा, मूल्य चुकाना है, ज्ञान को पाने का मूल्य चुकाना है, ये सेवा जो है ना मूल्य चुकाना है। पुराने जमाने में ऐसे कोई ज्ञान नहीं देता था, सेवा करते, और सेवा करते 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 और हमारी साधना पक जाती, हमारी जिज्ञासा परिपक्व हो जाती, जान को पाने का मूल्य मालूम पड़ता है सेवा से, सेवा से मालूम पड़ता है। और उसके बाद भगवान ने कहा परिप्रश्न, अब पर प्रश्न करो, अब पक गए, अब तुम्हारी जिज्ञासा सही हो गई, अब तुम पाना चाहते हो। एक बार की बात है, कोई एक व्यक्ति एक कोई चीजें बेच रहा था, वहां से कोई सेठ गुजर रहे थे। सेठ ने उनको पूछा, भैया ये चीज कितने की है? वो बेचने वाले का जाओ जाओ जाओ, वो आदमी चला गया। दूसरा आया, दूसरे ने पूछा, भैया ये चीज कितने की है? अरे जाओ 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 जाओ। अरे एक आदमी बैठा हुआ था, उस आदमी ने पूछा कि भैया तुम ये चीजें बेचने के लिए बैठे हो? बोले हाँ बेचने के लिए बैठा हूं। तो बोले जो भी तुमको कोई चीज पूछता है तो आधे से ज्यादा लोगों को तो तुम यूं ऐसे टरका देते हो, जाओ जाओ बोल के भगा देते हो वहां से, तुमको बेचना नहीं। अरे बोले बेचना तो है, लेकिन मेरे को मालूम है इसको खरीदना ही नहीं है, ये तो यूं पूछ रहा है। जब ये पूछता है तो उसके प्राणों में प्रवेश करके तत्क्षण में जान लेता हूं वो खरीददार है कि यूं पूछ रहा है। मैं समय गंवाने नहीं देता, मैं जाओ चले जाओ। ये पूछना, ये परिप्रश्न, भगवान ने इसीलिए बोला है परिप्रश्न, ये पूछ रहा है, ये लेने के लिए पूछ रहा है कि केवल यूं पूछ रहा है। इसलिए भगवान ने बहुत गहरी बात बोली। भगवान ने कहा कि तुमको सचमुच चाहिए कि चाहिए? आदमी बोलता, भाई भैया तुमको सचमुच चाहिए? बोलते ना, क्या तुमको सचमुच लेना है तो फिर मैं और भी कुछ सामान निकाल लूं। दुकानदार बोलता है ना, तुमको सचमुच चाहिए क्या कि या यूं ऐसे सारा सामान बाहर करवा के तुम चले जाओगे? आदमी ऐसा करता है, 100-50 जूते निकलवा देता है और उसके बाद बोलता है कि भैया अमुक रंग का है क्या? उसके दुकान में जो रंग है ही नहीं वो बोलेगा, वो है क्या? वो बोलेगा नहीं है। बोले राम राम, हम जा रहे, निकाल के रख लेना। भगवान सोचते ऐसा तो नहीं है, ये केवल पूछ रहा है या उसको सचमुच चाहिए। बुद्ध के सामने भी ऐसी घटना हुई, एक कोई साधक आया और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, भंते मेरे को ज्ञान चाहिए, आप मेरे को भिक्षु बना दो, मेरे को सन्यासी बना दो। बुद्ध शांत भाव से बैठे रहे, बोले नहीं। आसपास के साधक सोच रहे थे कि इतना ऊंचा ये जिज्ञासु आया है और आज बुद्ध जरूर इनको दीक्षा देंगे, सन्यास देंगे, उपदेश करेंगे। आहा हा, हम तो कभी रोए नहीं भगवान के लिए, हम तो कभी नहीं रोए ज्ञान के लिए, हम तो कभी नहीं रोए भिक्षु बनने के लिए, और ये व्यक्ति रो रहा है, इसका मतलब ये सच्चा साधक है। लेकिन बुद्ध बोले ही नहीं, आंख बंद करके बैठे हैं बुद्ध। वो आदमी प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है। एक आनंद नाम का उनका शिष्य था, उन्होंने इशारा किया, लगता है कि बुद्ध समाधि में चले गए, इशारा कर दिया, भंते एक साधक आया है और वो आपसे प्रार्थना कर रहा है ज्ञान को पाने के लिए। बुद्ध ने आंखें खोली और बुद्ध ने कहा, इनको भोजन शाला में ले जाओ, इसको भोजन करा के ले आओ, तब मैं इनको दीक्षा दे दूंगा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। बुद्ध में करुणा थी, प्रज्ञा थी, शील स्वभाव सबको मालूम था, बुद्ध की करुणा, बड़े प्रसन्न हुए सब लोग। आनंद उस व्यक्ति को लेकर के भोजनालय में जाता है और वो समझाता है कि भैया इनको पहले भोजन करवाओ, क्योंकि बुद्ध के पास ले जाना है, इनको दीक्षा देना है। थोड़े समय के बाद भगवान बुद्ध ने बुलाया आनंद को और आनंद को कहा, आनंद वो जो आदमी दीक्षा लेने वाला था उसको बुलाओ, मैं उसको दीक्षा देना चाहता हूं। आनंद बड़ा प्रसन्न हुआ और पूरे बिहार में उन्होंने उस आदमी को खोजा, वो आदमी नहीं मिला, वापस आ गया। बोले भंते मिल नहीं रहा है। बुद्ध ने कहा उसकी केवल भोजन की प्यास थी, केवल उसको भोजन चाहिए था, वो तो केवल बहाना था, ज्ञान का बहाना था, भूख तो भोजन की थी, ये वास्तविक इच्छा नहीं थी उसकी। इसलिए भगवान करें वास्तविक इच्छा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने कहा प्रणिपात परिप्रश्न, आप ध्यान देना वहां पर भी भगवान बहुत सावधानी से बोल रहे हैं परिप्रश्न, प्रश्न नहीं परिप्रश्न, केवल आप जानना चाहते वो नहीं, आपको पाना है, केवल जानने के लिए नहीं आपको पाने के लिए जानना है। आदमी जानने के लिए जानता है, आदमी जानने के लिए ज्ञान का कलेक्शन करने के लिए जानता है, ये जानू वो जानू, पाने के लिए नहीं। इसलिए भगवान ने कहा पाने के लिए जो जानना है वह वास्तविक जानना है, जो पाने के लिए जानने की इच्छा है वो वास्तविक इच्छा है और उसी को भगवान कहते हैं परिप्रश्न। और आज यहां वसुदेव जी महाराज जी का परिप्रश्न है शाधिमाम सुव्रता। हाँ, ये शाधिमाम जब बोला तो ऐसा लगता है त्राहिमाम। अभी हम लोग गए थे चित्रकूट, कामतागिरी की परिक्रमा करने के लिए गए थे, दंडवती परिक्रमा कर आया। अब वो तो कभी चलने का अभ्यास नहीं और दंडवती परिक्रमा कर रहे थे और इतनी कठिन थी कि जैसे हम उठ के खड़े हो जाते थे तो हाथ जोड़ के आधा या शब्द निकलता था ताहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अब आपको चलना है बहुत दूर तक, अब दंडवती परिक्रमा करना है, एक दो तीन कितनी करोगे आप, अनाया शब्द निकल जाता था त्राहिमाम, ये त्राहिमाम वाला है शाधिमाम। ओहो, हाँ, जैसे कोई भूख लगी हो, बहुत भूख लगी हो, प्राणों से भूख लगी हो और वो आदमी बोलता है ओहो भोजन भोजन, उस समय ये नहीं बोलता है वो कि आप हलवा पूरी, जो भूखा आदमी होता है ना मधु बाबू, तो वो ये कभी नहीं पूछता है क्या बना, ये नहीं कभी नहीं पूछता है। और क्या बना यदि आपने पूछा गणेश बाबू जी तो सामने वाला आंख बंद करके समझ ले कि इसको भूख नहीं है। यदि आपको भूख है नारायण, बहुत भूख है, तो आप कभी नहीं पूछोगे क्या बना सामने है? जो आया, फिर जो आया और आपका भोजन शुरू हो जाएगा, ये परिप्रश्न है शाधिमाम वाला। आप देख रहे हैं ओहो स्वामी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा कौन आए हैं, अच्छा 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 समझ लो कि अभी अरे आपके अंदर भूख हो ना तो आप ये नहीं देखोगे कौन, ये नहीं, आपके अंदर सत्संग की भूख है तो आप ये नहीं देखोगे कौन, अरे जो भी है, हाँ आप उसको बहुत बहुत अच्छी चीज के रूप में ग्रहण करोगे, आप सामान्य चीज भी बहुत अच्छी मालूम पड़ेगी। और भूख ना हो ना तो आपको कितनी भी ऊंची बात बता दे तो आपको लगेगा बिल्कुल हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने सबसे ज्यादा मूल्य दिया है भूख को, सबसे ज्यादा मूल्य दिया है जिज्ञासा को, सबसे ज्यादा मूल्य दिया है वेदना को। आपके अंदर वेदना पाने की वेदना है कि नहीं, ये बहुत गहरी बात है। इसलिए कहते सुव्रत तथा सुव्रत बोले ज्ञान का उपदेश शाधिमाम। ये शाधि शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, शाधिमाम। वहां पर भी भगवान अर्जुन ने भी भगवान के सामने यही प्रार्थना की शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, बोले शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बड़े प्रसन्न पहली बार मालूम पड़ा हो भगवान भी बड़े प्रसन्न है, भगवान भी बैठे हैं, भगवान भी अच्छा अच्छा आज काम हो गया, भगवान समझ गए आज पिताजी का काम हो गया, अब हो गया। और भगवान भी चाहते हैं कि नारद जी महाराज जी से ही काम हो जाए तो अच्छा है क्योंकि मेरे को उपदेश करना न पड़े, क्योंकि भगवान को उपदेश करना पड़े तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि वो बेटा है ना, क्योंकि बेटे की बात मानी कहां जाती है, क्योंकि वहां महत्व बुद्धि ही नहीं है, बेटा कितनी भी बात बताए तो हमारे दिमाग में थोड़ी आता है। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए और यहां पर नवयोगेश्वर संवाद के रूप में ज्ञान का उपदेश किया, बड़ा सुंदर उपदेश है, वो विषय अपना नहीं, अपने को तो अवधूत गीता में प्रवेश करना है। लेकिन यहां पर एक और एक शब्द का प्रयोग किया नारद जी महाराज जी ने। अभी सुना, ज्ञान का उपदेश करने के बाद भी अभी भगवान के प्रति उनके मन में पुत्रभाव जो है वो नहीं गया है, अभी भी लगता है ये मेरा बेटा है। तो नारद जी महाराज जी ने स्पष्टम महाराज जी बोलते हैं, स्पष्टम माम आपत्य बुद्धि मक्रतः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्ये परे व्यये। नारद जी महाराज इनका मेरा बेटा, ये सबसे खतरनाक जो बात है ना, यही तो है। माम अपत्यम, वसुदेव जी महाराज जी के मन में ये भाव है, अभी भी भाव है, माम अपत्यम। मेरे को लगता है कि उस समय भी वसुदेव जी महाराज बैठे बैठे सोच रहे होंगे, मेरे को ज्ञान तो हुआ लेकिन ये मेरे बेटे का क्या होगा। उस समय भी वसुदेव जी महाराज को लग रहा होगा, ज्ञान तो मेरा हो गया है, मेरे को तत्वबोध हो गया, मेरा उद्धार भी हो गया है, लेकिन इसका क्या होगा, कृष्ण का इसको तो बोध नहीं हुआ है। अब आदमी भी ये विरोधाभास है कि नहीं, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि भाई आप तो मुक्त हो गए और बेटे की मुक्ति की चिंता कर रहे हैं, तो आप कहां मुक्त हुए फिर। एक तरफ आप बेटे के मोक्ष की चिंता भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे कि मैं तो मुक्त हो गया, बेटा तुम्हारा क्या होगा। तो बन गए ना, तो अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे भगवान, हाँ वसुदेव जी महाराज की बेटे का क्या होगा, कृष्ण का क्या होगा। अब ये भी तो बूढ़ा होने को चला, ये प्रसंग जो है ना बहुत बात का प्रसंग है, ये बहुत बात का प्रसंग है। नारद जी महाराज जी तो तत्व दृष्टि है, नारद जी महाराज जी मन की बात जान गए, नारद जी महाराज समझ गए, इनको ज्ञान तो हुआ लेकिन ज्ञान में बहुत बड़ा प्रतिबंध उपस्थित हो गया है, और ये ज्ञान का प्रतिबंध यही है, माम अपत्यम मेरा बेटा। अरे बोले अब ये तो ज्ञान तो होने नहीं देगा, ये तो प्रतिबंध बन के उपस्थित हो गया, ये आत्मनिष्ठा में जाने नहीं देगा इनको, ये ज्ञान होने के बाद भी वो बेटी की चिंता करेंगे। ओहो, और बेटे की चिंता फिर वो और भी बहुत सारे विस्तार को प्राप्त हो जाती है, बेटे की चिंता, पोतों की चिंता, सबके उद्धार की चिंता में बदल जाती है वो। समझ गए नारद जी महाराज, इसलिए नारद जी महाराज ने कहा कि ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन आपको क्या करना है मालूम है, भले अंतिम प्रतिबंध आपको हटाना है, और वो अंतिम प्रतिबंध है माम अपत्यम। आपके अंदर जो मेरा बेटा, या अभी माम अपत्यम का अर्थ केवल मेरा बेटा ही नहीं, आप ममता जहां तक आप रखते हैं ना, वो सारे पदार्थों को आप ले लेना। माम अपत्यम मेरा बेटा, माम गृहम मेरा घर, माम धनम मेरा धन, मम शरीरम, मैंने आप ममता जहां जहां पर रखते हो ना, वो सारी चीजें आपके अध्यात्म में तत्वबोध में प्रतिबंध है। आप तो आत्मा हैं, आप जब आत्मा हैं तो आपका आत्मा तो आत्मा है, वो शरीर तो है ही नहीं, और आप अपने उस आत्म तत्व को कहां पर जोड़ रहे हैं। माम अपत्यम मैंने आपने अपने को जोड़ दिया, ये मम जो है ना अहम का विस्तार है, ये मम अहम का विस्तार है। आप मैं बोलते हैं तो फिर मैं के बाद मेरा आ जाता है, मेरा क्या है, जो मैं का किसी वस्तु के साथ जुड़ना ही तो मेरा है। आपने किसी को भी आप मैं जोड़ के देख लो, वो मम हो जाती वस्तु, आप अपने को जोड़ो किसी के भी साथ, वो मम हो जाती है। भगवान ने कहा इसको हटाओ, माम अपत्यम आमक मकृथा, और वो जो आप कहां पर सोचते हैं मेरा अपत्य, मेरा बेटा कहां पर समझते हो, कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे, अरे बोले वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो सबकी आत्मा है, वो सबकी आत्मा है, वो तुम्हारी भी आत्मा है, मेरी भी आत्मा है, जीव मात्र की आत्मा, जड़ चेतन संपूर्ण पदार्थों के अंदर निवास करने वाला वो गूढ़ तत्व ईश्वर भगवान, और तुम उसको क्या बोल रहे हो, मेरा बेटा। तो मेरा समझते तो ठीक था, हाँ, यदि भगवान को मेरा समझते तो ठीक था, लेकिन आप मेरा नहीं समझ रहे हैं, मेरा बेटा समझ रहे हैं, यही तो गड़बड़ हो गया। आपने उसको परिछिन्न बना दिया ना, परिछिन्न बना दिया, मतलब उसका त्याग करो। और जैसे ये बात बोली ना, तो वो बोध था नारायण। ये सामान्य, ये अवस्था जो है ना, ये अवस्था, ये सामान्य अवस्था नहीं है। इसलिए आदमी के अंदर बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, बहुत सारी अवस्थाएं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी आपके अंदर ऐसी आध्यात्मिक भावनाएं पैदा हो जाती हैं, ओहो हो, आपको लगता है कि बस बस बस। कभी कभी आपका मन ऐसा सत्संग में लग जाता है कि लगता है कि बस बस बस, काम अपना हो गया। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अरे हम तो बहुत दूर हैं। ये जो समय है ना, वसुदेव जी महाराज जी का बहुत गहरा समय है, और इसीलिए आज वसुदेव जी महाराज जी को ज्ञान होना ही होना है, परिपाक हो गया साधना का। और जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम ये भाव छोड़ो, ये तो साक्षात भगवान है, तुम्हारा बेटा, केवल बेटा तुम्हारा नहीं है, बन के आ गए। और जैसे ही ये बात सुनी और अज्ञान का पर्दा हटा, ब्रह्म भूयाए कल्पते, वसुदेव जी महाराज को तत्वबोध हो गया। वसुदेव जी महाराज को बोध वो हो, अब ये कृष्ण जो है, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और वो तो स्वयं बोध रूप है, ये स्वयं मोक्ष रूप है। अब कोई चिंता नहीं है, सारी चिंताओं से मुक्त, तत्र कह मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यता। जब वो एक आत्म तत्व का दर्शन करने लगे सबके भीतर, तो वहां शोक मोह सारा समाप्त हो गया, आंखें बंद हो गई, प्रसन्न हो गए भगवान की, अपने पिता का काम पूरा हो गया। अब यहां पर ये आपके 11वें स्कंद का 6वां अध्याय है, जिसमें आप प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की उम्र अभी 125 वर्ष की हो गई है, भगवान की उम्र 125 वर्ष की है, और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान 125 वर्ष की उम्र आपकी हो गई है, और जितने भी काम आपके अवतार के थे पूरे हो चुके हैं, धर्म की स्थापना हो गई है, अधर्म पर प्रतिबंध लग चुका है, अधर्म का नाश हो चुका है, अब आप अपने धाम को आ जाइए, आप प्रार्थना कर दी। लेकिन अभी भगवान को चिंता है, एक शिष्य की चिंता है, और वो एक शिष्य हैं उद्धव जी महाराज। यहां बहुत गूढ़ गंभीर रूप से आप सोचो तो यहां भगवान को वो चिंता नहीं है कि वो यदुवंशियों का विनाश होगा कि नहीं। अच्छा, भगवान नहीं रहते तो भी यदुवंशियों का विनाश तो पक्का था। अब यहां पर मूल में तो भगवान ने ऐसे ही बोला है कि भैया अभी काम बाकी है, बोले यदुवंशियों का विनाश का काम बाकी है, वो पूरा हो जाए तो मैं अवतार कार्य पूर्ण करूंगा। मेरे को लगता है कि ये बात तो भगवान की बहाना मात्र है, भाई भगवान अवतार कार्य पहले भी पूरा कर दे तो भी यदुवंशियों का विनाश तो अवश्यंभावी है, क्योंकि वो श्राप मिला हुआ है और उससे तो टाला नहीं जा सकता है। लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया और भगवान तैयारी करने लगे, स्वधाम गमन की तैयारी करने लगे। भगवान ने आदेश दिया, बोले सब लोग जितने भी पुरुष हैं प्रभास क्षेत्र में जाए और वहां यज्ञ याग साधना दान व्रत करे, और जितनी स्त्रियां थी उनको भगवान ने कहा कि तुम अपने बच्चों को लेके जाओ शंखोद्धार क्षेत्र में और वहां तपस्या करो, यज्ञ याग आदि करो, जाओ। और भगवान तटस्थ हो गए नारायण। अब ये बात मालूम पड़ी उद्धव जी महाराज जी को, आश्चर्य की बात, वहां लाखों यदुवंशी हैं और भगवान के बहुत निकट हैं, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि भगवान चाह क्या रहे हैं, भगवान सोच क्या रहे हैं। भगवान के आंखों से, भगवान के व्यवहार से उतरकर, मन तक पहुंचकर भगवान के मनोगत को जानने का सामर्थ्य वह किसी में भी नहीं है, केवल एक व्यक्ति है और वो है उद्धव। समझ के हाथ जोड़ के खड़े हो गए उद्धव जी, रोने लगे और रोते रोते उन्होंने कहा, भगवान त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय माम अपि। बोले मैं समझ गया हूं, मैं समझ गया हूं, अब आप अपने अवतार कार्य को पूरा करने वाले, मैं समझ गया हूं, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप ध्यान देना, यहां पर ज्ञान की इच्छा नहीं है, ये भगवत विरह है, भगवत विरह। और एक बहुत गहरी बात भी बोली है उन्होंने, बोले तुम्हारे बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा और मेरे को भी तुम अपने साथ ले चलो। अपने साथ ले चलो मतलब तुम्हारे साथ मैं भी मरना चाहता हूं। हाँ मतलब यही है भाई, भैया तुम हमको भी साथ ले चलो, हमको भी साथ ले चलो। लोग मतलब क्या है भाई, हमको भी साथ ले चलो का मतलब है कि तुम्हारे साथ हम भी मरना चाहते हैं, हम यहां जीवित नहीं रहना चाहते आपके बिना। बोले आप मरना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आदमी जो मरना चाहता है ना, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कोई आदमी जब मर जाता है तो उस समय आदमी जब शोक व्यक्त करता है तो क्या बोलता है, अब मेरा क्या होगा। आदमी उस समय यही सोचता है, ओहो अब मेरा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण हम तो बड़े सुखी थे, तुम हमारा बड़ा ध्यान रखते थे, और अब हमारा कौन ध्यान रखेगा, अब हमारा क्या होगा। आदमी ये नहीं बोलता है तुम्हारा क्या होगा, मरने के बाद तुम कहां जाओगे, तुमको क्या कहां जाओगे, तो रहने की जगह मिलेगी कि नहीं, खाने पीने की तुम्हारी बाद में व्यवस्था होगी कि नहीं, वो नहीं बोलता है आदमी। आदमी सबसे पहले क्या बोलता है, मेरा क्या होगा। और यहां पर भी उस बात को हटाया उद्धव जी महाराज ने, अरे बोले मेरा क्या होगा, मेरे को चिंता ही नहीं है, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। बोले मेरी चिंता ही नहीं, क्यों नहीं है, अरे तुमने मेरे को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया, उच्छिष्ट भोजनो दासा तव माया जय मही। बोले आपके उच्छिष्ट का ग्रहण कर आपने बोला है, उच्छिष्ट का ग्रहण या ध्यान देना दो प्रकार से है, महात्माओं का भी आप शीत प्रसाद बोलते हैं, वैष्णव लोग उसको शीत प्रसाद बोलते हैं, जैसे साधु महात्मा भोजन किए हो उसके भोजन में से कुछ ग्रहण करना है, इसको शीत प्रसाद बोलते हैं। थाली में गुरु ने भोजन किया उसी में से आप ग्रहण करते हैं, शीत प्रसाद, उसको भी बड़ा महाप्रसाद माना गया। और यह उच्छिष्ट भोजनों का अर्थ क्या है कि भगवान उपदेश कर रहे हैं किसी और को, और उद्धव जी महाराज जी बैठे हैं और सारा ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, वो क्या है, उच्छिष्ट भोजनो दासा, भगवान उपदेश कर रहे हैं दूसरे को, और उस समय बैठकर कोई दूसरा सुन रहा है। बोले तुम्हारा उच्छिष्ट, हमने बहुत ज्ञान उच्छिष्ट बहुत ग्रहण किया है, और हमारी मेरी माया, सारी माया बोले समाप्त हो गई, मैंने माया को पार कर लिया, माया को पार कर लिया। ये बड़ा मजेदार प्रसंग है, माया को पार कर लिया, फिर ज्ञान का उपदेश की जरूरत क्या थी, ये भी एक बड़ा रहस्य है। इस विषय को हम कल करेंगे, समय पूरा हो गया है, आप कम से कम आज 11 बार तो मंत्र का जप करेंगे और उसके बाद वाणी को विराम, सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय,
ओम
शिवाय ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
शिवाय
ॐ नमः 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 शिवाय
नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।